नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए, बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
श्री कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जुलाई में दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी भारत जापान संयुक्त वक्तव्य का उल्लेख करते हुए दोनों मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने नेतृत्व में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत देती है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पौसुमी बसु और नेपाल के शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद काफले कर रहे हैं। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
भारतीय चिकित्सा यात्रा प्रतिनिधिमंडल ने भूटान का दौरा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा समन्वित इस दो दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच चिकित्सा साझेदारी और स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी विकास पर चर्चा की गई। समूह ने थिम्पू में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य संस्थानों और यात्रा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरे का संचालन भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने किया। पिछले महीने विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की राजधानी थिम्पू में भूटानी प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में भारत भूटान सहयोग पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बढ़ते हुए असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
संयुक्त अवामी कार्यवाही समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। समिति ने कहा कि वह पूरे क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से प्रदर्शनों को तेज करेगी और बेहतर आर्थिक स्थितियों तथा संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। पाकिस्तान ने POJK में इससे पहले कभी इस स्तर का विरोध नहीं देखा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि POJK के लोग इस बार उसी जाल में नहीं फंसेंगे जैसा कि वे अतीत में कई बार फंस चुके हैं। इन विरोध प्रदर्शनों ने POJK पर भारत के रुख को और मजबूत किया है। भारत का हमेशा से यही कहना रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोगों को प्रशासन द्वारा दबाया गया है और उन्हें बुनियादी अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारी ओली अहमद को हराया जो दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। इस चुनाव में संसद के कुल 343 सदस्यों ने वोट डाले। मुख्य चुनाव आयुक्त ASM नासिरुद्दीन ने श्री आलमगीर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया। ये चुनाव 35 वर्षों में पहली बार हुआ क्योंकि बांग्लादेशी राष्ट्रपति चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। पिछले चुनावों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। एमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान रक्षा साझेदारी पर सहमत। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। बढ़ते असंतोष पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।